सूरत शुरा के बारे में एक छोटी सी बात कहूंगी। आप लोग जो शुरू से कुरान पाक का सफर मेरे साथ तय कर रहे हैं, सूरत शुरा की एक खूबी है कि ये पूरी की पूरी अंबिया कराम के किस्सों में से है। सूरत शुरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौसीम मीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तौसीन मीम हरूफ मुकत्तात हैं। ये आयतें रोशन किताब की हैं। इनके ईमान न लाने पर शायद आप तो अपनी जान खो देंगे। अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई ऐसी निशानी उतारते कि जिसके सामने इनकी गर्दनें खम हो जाती और इनके पास रहमान की तरफ से जो भी नई नसीहत आई ये उससे रूगर्दानी करने वाले बन गए। इन लोगों ने झुटलाया है, अब इनके पास जल्दी से इसकी खबरें आ जाएंगी जिसके साथ वो मजाक करते थे। ये थी आयत नंबर 1 से 6, 1 to 6। इसका उनवान है, शायद आप खुद को हलाक कर लेंगे। एक सच्चे दाई दीन की तड़प, अल्लाह के नबी की तड़प थी। इस चीज़ की बड़ी फिक्र थी कि लोग अल्लाह के दीन की तरफ आ जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें यही तड़प दे दे। अवलम यरौ इलल अर्द, क्या उन्होंने जमीन पर नजरें नहीं डाली कि हमने इसमें हर तरह के नफीस जोड़े किस कदर उगाए हैं। बेशक इसमें यकीनन निशानी है और इनमें से अक्सर लोग मोमिन नहीं, और तेरा रब यकीनन वही गालिब और मेहरबान है। आयत नंबर 7 से 9, 7 to 9। इसका अनवान लिखिए, असबाब के पीछे अल्लाह की कुदरत को देखो। मट्टी के अंदर से एक पौधे का निकल आना इतनी ही बड़ी निशानी है जितनी निशानी कल क्यामत के पैदा होने को लोग देखेंगे। जिसके अंदर इबरत की निगाह होगी वो यकीनन इन सब चीज़ों को देखकर मान लेगा कि एक दिन क्यामत आएगी और हम कब्रों से निकाले जाएंगे। वइज़ नादा रब्बुका मूसा, और जब तेरे रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा कि तू जालिम कौम के पास जा, कौम फिरौन के पास, क्या वो परहेजगारी न करेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, मुझे तो खौफ है कि कहीं वो मुझे झुटला न दें, और मेरा सीना तंग हो रहा है, मेरी जुबान चल नहीं रही। बस तू हारून की तरफ भी वही भेज, और इनका मुझ पर एक कसूर का दावा भी है, मुझे डर है कि कहीं वो मुझे मार न डालें। जनाबे बारी ताला ने फरमाया, हरगिज ऐसा न होगा, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ है। तुम दोनों फिरौन के पास जाकर कहो कि बिलाशुबा हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं कि तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझे बचपन के जमाने में अपने हाँ नहीं पाला था, और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में नहीं गुजारे थे? फिर तो अपना वो काम कर गया जो तू कर गया, तू नाशुक्रों में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने इस काम को उस वक्त किया जबकि मैं राह भूले हुए लोगों में से था, फिर तुमसे खौफ खाकर मैं तुम में से भाग गया, फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म और इल्म अता फरमाया और मुझे अपने पैगम्बरों में से कर दिया। मुझ पर तेरा क्या यही एहसान है जिसे तू जतला रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? फिरौन ने कहा, रब्बुल आलमीन क्या चीज है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमानों और जमीन और इसके दरमियान की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द वालों से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, लोगो, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो यकीनन दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही मशरिक और मगरिब का और इनके दरमियान की तमाम चीजों का रब है अगर तुम अकल रखते हो। फिरौन कहने लगा, सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुझे कैदियों में डाल दूंगा। मूसा ने कहा, अगरचे मैं तेरे पास कोई खुली चीज ले आऊं। फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चों में से है तो इसे पेश कर। आपने इसी वक्त अपनी लाठी डाल दी जो अचानक खुल्लम खुला जबरदस्त अजदहा बन गई और अपना हाथ खींच निकाला तो वो भी इस वक्त हर देखने वाले को सफेद चमकीला नजर आने लगा। फिरौन अपने आसपास के सरदारों से कहने लगा, भाई ये तो कोई बड़ा दाना जादूगर है, ये तो चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से ही निकाल दे। बताओ अब तुम क्या हुक्म करते हो? इन सब ने कहा, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हरकारे भेज दें जो आपके पास जी इल्म जादूगरों को ले आए। फिर एक मुकर्रर दिन के वादे पर तमाम जादूगर जमा किए गए और आम लोगों से कह भी दिया गया कि तुम भी मजमे में हाजिर हो जाओ ताकि अगर जादूगर गालिब आ जाएं तो हम भी इन्हीं की पैरवी करें। जादूगर आकर फिरौन से कहने लगे, अगर हम जीत गए तो हमें कुछ इनाम भी मिलेगा। फिरौन ने कहा, हाँ बड़ी खुशी से, बल्कि ऐसी सूरत में तुम मेरे खास दरबारी बन जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से फरमाया, तुम्हें कुछ डालना है तो डाल दो। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी और कहने लगे, इज्जत फिरौन की कसम, हम यकीनन गालिब हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी लाठी मैदान में डाल दी और जिसने इसी वक्त इनके झूठ मूठ के करतब को निगलना शुरू कर दिया। ये देखते ही जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर गए और उन्होंने साफ कह दिया कि हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, यानी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। मूसा और हारून के रब पर। फिरौन ने कहा, मेरी इजाजत से पहले तुम इस पर ईमान ले आए, यकीनन यही तुम्हारा बड़ा सरदार है जिसने तुम सबको जादू सिखाया, सो तुम्हें अभी अभी मालूम हो जाएगा। कसम है मैं अभी तुम्हारे हाथ पांव उल्टे तौर पर काट दूंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा, कोई हर्ज नहीं, हम तो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं इस बिना पर कि हम सबसे पहले ईमान वाले बने हैं। हमें उम्मीद पड़ती है कि हमारा रब हमारी सब खताएं माफ कर देगा। और हमने मूसा को वही की कि रातों रात मेरे बंदों को निकाल ले चल, तुम सब पीछा किए जाओगे। फिरौन ने शहरों में हरकारों को भेज दिया कि यकीनन ये गिरोह बहुत कम तादाद में है और इस पर हमें सख्त गजबनाक कर रहे हैं और यकीनन हम बड़ी जमात हैं इनसे चुकन्ना रहने वाले। बिलाखिर हम नए नए बागात से और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मकामात से निकाल बाहर किया। कजालिका और रसनाहा बनी इसराइल, इसी तरह हुआ और हमने इन तमाम चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। बस फिरौनी सूरज निकलते ही इनके ताकुब में निकले। बस जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा के साथियों ने कहा, हम तो यकीनन पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे राह दिखाएगा। हमने मूसा की तरह वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। बस इसी वक्त दरिया फट गया और हर एक हिस्सा पानी का मिसल बड़े पहाड़ के हो गया। और हमने इसी जगह दूसरों को नजदीक ला खड़ा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को और इनके तमाम साथियों को निजात दी। फिर और दूसरे लोगों को डुबो दिया। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है और इनमें के अक्सर लोग ईमान वाले नहीं। और बेशक आपका रब बड़ा गालिब और मेहरबान है। ये थी आयत नंबर 10 से 68, 10 to 68। इसका अनवान लिखेंगे, मूसा और बनी इसराइल की कहानी, कौमों के अरूज और जवाल की कहानी। वाक्य पीछे पड़ा हुआ, अगर इसमें जो इस हिस्से में कुछ चीज़ें थी अगर उस पर हम नज़र डालना चाहें तो पहली बात यह है कि बनी इसराइल जब अल्लाह के साथ जुड़े हुए थे, अल्लाह ताला ने फिरौन जैसे बड़े दुश्मन को डुबो दिया जो उन पर जुल्म सितम करता था। और यही बनी इसराइल जब थोड़े आज़ाद हुए तो इन्होंने अल्लाह के हुक्मों को ना माना, अल्लाह ताला ने इनको दूसरी कौमों के जेरे तहत कर दिया। हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि जो बंदा अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जीता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी देर से करे या जल्दी करे लेकिन गलबा अता करता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अगला वाक्या कहानी की तरह ही पढ़ेंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वतलु अलैहिम नबा इब्राहिम, इन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया भी सुनाओ। जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो, उन्होंने जवाब दिया कि इबादत करते हैं बुतों की, हम तो बराबर इनके मुजावर बने बैठे हैं। आपने फरमाया कि जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या तुम्हें नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा, हम ये कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादा को इसी तरह करते हुए पाया। आपने फरमाया, कुछ खबर भी है जिन्हें तुम पूछ रहे हो? तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा, वो सब मेरे दुश्मन है, सिवाय अल्लाह ताला के तो तमाम जहान का पालनहार है जिसने मुझे पैदा किया है और वही मेरी राहबरी फरमाता है, वही है जो मुझको खिलाता पिलाता है और जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे शफा अता फरमाता है और वही मुझे मार डालेगा फिर जिंदा कर देगा और जिससे उम्मीद बंधी है कि वो रोजे जजा में मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। और इस खूबसूरत मुकालमे के बाद अल्लाह से कुछ मांगते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं आप साथ साथ इन आयतों को। रब्बी हबली हुक्मं वल्हिक्नी बिस्सालिहीन वजल्ली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन। ए मेरे रब, मुझे कुव्वते फैसला अता फरमा और मुझे नेक लोगों में मिला दे, आमीन। और मेरा जिक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख, आमीन। वजालनी मिन वरसति जन्नति नाईम, मुझे नेमतों वाली जन्नतों के वारिसों से बना दे। वग़फिर ली अभी इन्नहु काना मिनद्दाल्लीन, और मेरे बाप को बख्श दे, यकीनन वो गुमराहों में से था। और जिस दिन के लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे मुझे रुसवा न करना। कौन सा दिन? यौम ला यन्फउ मालुम वला बनून, जिस दिन के माल और औलाद कुछ काम न आएगा। इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, लेकिन फायदे वाला वही होगा जो अल्लाह के सामने बेऐब दिल लेकर आ गया। और परहेजगारों के लिए जन्नत बिल्कुल करीब कर दी जाएगी और गुमराह लोगों के लिए जहन्नम जाहिर कर दी जाएगी। और इनसे पूछा जाएगा कि जिनकी तुम पूजा करते रहे वो कहाँ हैं, जो अल्लाह के सिवा थे क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं या कोई बदला ले सकते हैं। बस वो सब और कुल गुमराह लोग जहन्नुम में उन्दे मुंह डाल दिए गए और इबलीस के तमाम लश्कर भी वहां आपस में लड़ते झगड़ते हुए कहेंगे कि कसम अल्लाह की, यकीनन हम तो खुली गलती पर थे, जबकि तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझते थे और हमें तो सिवाय इन बदकारों के किसी और ने गुमराह किया नहीं। फमा लना मिन शाफिईन, अब तो हमारा कोई सिफारशी ही नहीं और ना कोई सच्चा गमख्वार दोस्त। अगर काश के हमें एक मर्तबा फिर जाना मिलता तो हम पक्के सच्चे मोमिन बन जाते। इन नफी ज़ालिकल आया, ये माजरा यकीनन एक जबरदस्त निशानी है, इनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। यकीनन आपका परवरदिगार ही गालिब मेहरबानी वाला है। ये थी आयत नंबर 69 से 104, 69 से 104। इन आयतों का टॉपिक लिखिए, इब्राहिम सलामत दिल लेकर रब के पास गए। हज़रत इब्राहिम को इतनी प्यारी दुआएं करने का ख्याल कहाँ से आया? इन दुआओं को अगर याद कर सकें या कम से कम अपनी दुआओं का हिस्सा बना लें, इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि आपका दिल खुलने लगेगा। फिर इन आयतों में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी, इब्राहिम का अल्लाह ताला के साथ अदब। आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी, अगर आप बाद में जब इसको दोबारा पढ़ेंगे जाके इंशाल्लाह ताला, तो आयत नंबर 78 से लेकर 89 पे गौर कीजिएगा, कुछ पॉइंट जमा कीजिएगा। कल के इंशाल्लाह डिस्कशन सेशन में इस पे आप लोग बात करेंगे कि इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ किस अदब के साथ बात कर रहे हैं। सिर्फ एक इशारा दे देती हूँ ताकि सोचना आ जाए। कहते हैं कि वह इज़ा मरित्तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा वो देता है। हम वो तो कहते हैं जब तू बीमार करता है तो हम अपनी कोशिश से शिफा याब हो जाते हैं। ये अदब है, इस पे पूरी किताबें लिखी हुई हैं। आपको पता है अंबिया कराम किस अदब से अल्लाह से बात करते थे, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उनको इतने रंग लगाए थे। अल्लाह ताला हमें भी यही सीखने वाला बना दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, कज़्ज़बत कौम नूह निल मुरसलीन, कौम नूह ने भी नबियों को झुटलाया, जबकि इनके भाई नूह ने कहा क्या तुम्हें अल्लाह का कुछ खौफ नहीं, सुनो मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँ, बस तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए और मेरी बात माननी चाहिए, मैं तुम में इस पर कोई अजर नहीं चाहता, मेरा बदला तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मा है, बस तुम अल्लाह का खौफ रखो और मेरी फरमाबरदारी करो। कौम ने जवाब दिया, क्या हम तुझ पर ईमान लाएं, तेरी ताबेदारी तो रजील लोगों ने की। आपने फरमाया मुझे क्या खबर कि वो पहले क्या करते थे, इनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मा है, अगर तुम्हें शौर हो तो। मैं ईमान वालों को धक्के नहीं देने वाला, मैं तो साफ साफ तौर पर डरा देने वाला हूँ। उन्होंने कहा ए नूह, अगर तू वास ना आया तो यकीनन तुझे संसार कर दिया जाएगा। आपने कहा है मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने मुझको छुटलाया। फ़तह बैनी व बैनहुम फ़तहम, बस तू मुझ में और उनमें कोई कतई फैसला कर दे और मुझे और मेरे बा ईमान साथियों को निजात दे। बस हमने इसे और इसके साथियों को भरी हुई कश्ती में सवार करके निजात दे दी, इसी तरह बाकी के तमाम लोगों को हमने डबो दिया। इन फी ज़ालिकल आया, यकीनन इसमें बड़ी इबरत है, इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले न थे, और बेशक आपका परवरदिगार अलबत्ता वही है जबरदस्त रहम करने वाला। ये थी आयत नंबर 105 से आयत नंबर 122, 105 to 122। इसमें लिखिएगा कश्तिये नूह अल्लाह की कुदरत की निशानी। आप नोट कर रहे हैं कि सूरत शोरा में हर नबी की कहानी के बाद ये लफ्ज आ रहे हैं, आप इसमें हाईलाइट कर लीजिएगा। आयत नंबर 121 में इन नफी ज़ालिकल आया, निशानी। आजकल हम अल्लाह की निशानियों की रोशनी में अगर बात कर रहे हैं, हम अमूमन निशानियां समझते हैं सूरज चांद सितारों को। कौमों के अरूज और जवाल में इसी तरह इनफरादी तौर पर इंसानों की जिंदगी में जो वाकयात आते हैं, पेश आते हैं, उनमें भी निशानियां होती हैं। हम भी अगर अपनी जिंदगी में ऐसे वाकयात देखें तो इंशाल्लाह बहुत सी निशानियां मिल सकती हैं। अगली कौम कौम आद, कज़्ज़बत आद उनिल मुरसलीन, आदियों ने भी रसूलों को छुटलाया, जबकि इनसे इनके भाई हूत ने कहा क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, बस मैं इस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मेरा सवाब तो तमाम जहान के परवरदिगार के पास है। क्या तुम एक टीले पर बतौर खेल तमाशा यादगार इमारतें बना रहे हो, और बड़ी सनत वाले मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया कि तुम यहाँ हमेशा रहोगे। कौमे आद की आदत ही बुलंद इमारतें बनाते थे, बड़े बड़े घर निशानियों के तौर पे, यादगारों के तौर पे। तो अल्लाह ताला को इस बात पे इन पे गुस्सा आया, इसी पे हजरत हूद अलैहिस्सलाम इनको रोक रहे हैं। वैसा बतश तुम जब बाहरीन, और जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो सख्ती और जुल्म से पकड़ते हो। अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो, इससे डरो जिसने उन चीजों से तुम्हारी मदद की जिन्हें तुम जानते हो। इसने तुम्हारी मदद की माल से और औलाद से, बागात से और चश्मों से। मुझे तो तुम्हारी निस्बत बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा, आप वाज कहें या वाज कहने वालों में ना हो, हम पर यकसा है। ये तो पुराने लोगों की आदत है, हम तो हरगिज़ हिसाब नहीं दिए जाएंगे। चूंकि आदियों ने हजरत खुद को छुटलाया, इसलिए हमने इनको तबाह कर दिया। यकीनन इसमें निशानी है, और इनमें से अक्सर बेईमान थे। बेशक आपका रब वही है, गालिब मेहरबान। ये थी आयत नंबर 123 से 140 तक। इनका उनवान है यादगारें कायम करने की बजाय यादगार काम करो। जब किसी कौम पे जवाल आता है ना, तो वो इमारतें कायम करके बड़ा बनना चाहते हैं। आज के दौर का भी यही मसला है, सबसे बड़ी इमारत, सबसे ऊंची बड़ी बात। लोग वो किताबों में नाम लिखाने के लिए लोग अपने आप को बड़ा बनाते हैं, लेकिन जब अल्लाह के अजाब आते हैं तो ये बड़ी बड़ी इमारतें भी इंसान को उस पकड़ से नहीं बचा सकती। कौमे आद में बहुत बड़ी निशानी है, और अफसोस की बात है कि जब मुसलमान इस चीज़ का शिकार होने लगे तो अल्लाह को ज्यादा गुस्सा आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि तुम देखोगे कि चरवाहों को यानी बकरियों को चरवाने वाले बड़ी बड़ी इमारतें कायम करेंगे। और आज देखे तो मेरा ख्याल है कि मुसलमान जितने बड़े खूबसूरत घर बनाना चाहते हैं, शायद नॉन मुस्लिम उतने नहीं। बहरहाल ये एक ऐसी बात नहीं है कि इस पे हम ये सोचें कि अब घर बनाया नहीं जा सकता। असल वो इमारत जिसका मकसद कोई ना हो, यादगारें, बस एक बुर्ज बना दिया, हजारों लाखों लग गया, कह दी एक निशानी है, एक यादगार है, क्या फायदा हुआ? थोड़ा सा उसको बड़ा कर लें, थोड़ा सा उसको फैला लें, कुछ गरीब उसमें रह सके। बेमकसद बेकार कामों से इस्लाम हमें रोकता है। कस्सबत समूदुल मुरसलीन, समूदियों ने भी पैगंबरों को छुटलाया। इनके भाई सालेह ने इनसे फरमाया, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानतदार पैगंबर हूँ, तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा करो। मैं इस पर तुमसे कोई इजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो बस परवरदिगारे आलम पर है। क्या इन चीजों में जो यहाँ हैं तुम अमन के साथ छोड़ दिए जाओगे, यानी इन बागों और इन चश्मों में और इन खेतों और इन खजूरों के बागों में जिनके शगुफे नरम और नाजुक हैं? और अब तुम पहाड़ों को तराश तराश कर पुरतकल्लुफ मकानात बना रहे हो? बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। बेहद बेबाक हद से गुजर जाने वालों की इताअत से बाज आ जाओ, जो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इसलाह नहीं करते। वो बोले कि बस तू इनमें से है जिन पर जादू कर दिया गया, तू तो हम जैसा ही इंसान है, अगर तू सच्चों से है तो कोई मौजजा ले आ। आपने फरमाया, ये है ऊँटनी, पानी पीने की एक बारी इसकी और एक मुकर्रा दिन की बारी पानी पीने की तुम्हारी। खबरदारी से बुराई से हाथ न लगाना, वरना एक बड़े भारी दिन का अजाब तुम्हें गिरफ्त कर लेगा। फिर भी उन्होंने इसकी कूचें यानी पाँव काट डाले, बस वो पस वो पशेमान हो गए और अजाब ने इनको आ दबोचा। बेशक इसमें इबरत है, और अक्सर लोग मोमिन न थे। बेशक आपका रब जबरदस्त और मेहरबान है। ये थी आयत नंबर 141 से 169, आयत नंबर 141 से 159। इसका उनवान है बड़े बड़े घर अल्लाह की पकड़ से ना बचा सके। एक बड़ा खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह इस बारे में कि ये कौम घर कैसे बनाती थी। अकल दंग रह जाएगी आपकी देखने से कि ये इतने बड़े बड़े घर बना ले, पत्थरों को तराश के उसमें घर बनाते थे, लेकिन जब अल्लाह के अजाब आए तो फिर उसके अंदर इनको कोई चीज बचा ना सकी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें बामकसद जिंदगी दे, और बेकार बेमकसद इमारतें और अपनी एनर्जियों को जाया करने की बजाय अपने तमाम कामों को इस तरह करने वाले बन जाएं कि उसका हमें या किसी और को फायदा हो सके।